लघुवासुदेव मननम। अब जो मूल विषय था अगले चतुर्थ वर्णक में आएगा, जो शुरू में हमारे ये क्या चौधरी जी क्या है, देखो इनको भी याद हो गया, कल सुना रहे थे, बोले स्वामी जी आप ये रोज बोलते हैं, आत्मा के दुख का कारण शरीर, शरीर की प्राप्ति कर्म से, कर्म होते हैं राग द्वेष से, राग द्वेष होते हैं अभिमान से, अभिमान होता है अविवेक से, और अविवेक होता है अज्ञान से। कितने चीजें हो गई इसमें, सात चीजें आ जाती है। तो ये अभी आगे आने वाला है। उससे पहले जिस ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन आचार्य के द्वारा किया जा रहा है, उसमें बता दिया अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद के द्वारा वह एक होते हुए भी अनेक रूप में कैसे हो जाता है। दो ही वस्तु हैं, आत्मा और अनात्मा, फिर भी वह अनेक कैसे होते हैं, जिसमें अवच्छेदवाद के द्वारा आपने ये श्रवण किया। दृष्टांत दिया था आकाश का, घटाकाश मठाकाश एक ही आकाश, घट से अवच्छिन्न हो जाए। अवच्छेद का मतलब होता है भेद, अवच्छेदक भेद करने वाला। घड़ा जो है वह मठ नहीं है, और मठ जो है वह घड़ा नहीं है, इसलिए घट से अवच्छिन्न मतलब युक्त जो आकाश है वह मठ वाले आकाश से अलग लगता है। तो घड़े के आकाश और मठ के आकाश का भेदक कौन है, घड़ा और मठ, ये हो गया अवच्छेदक, भेद करने वाला, भिन्न करने वाला। आकाश आकाश एक है, लेकिन घट और मठ एक नहीं है, इसलिए अवच्छेदवाद के द्वारा समझ में आ जाता है कि जिससे वह आकाश अवच्छिन्न हुआ, तो वे जो आकाश है स्वयं तो निरवच्छिन्न अवस्था में, घट और मठ से रहित अवस्था में, न घटाकाश है न मठाकाश है, केवल महाकाश है। महाकाश मतलब बड़ा आकाश, व्यापक आकाश। लेकिन जब घड़े से युक्त हो गया, मठ से युक्त हो गया, तब उसी का नाम पड़ गया घटाकाश और मठाकाश। तो अवच्छिन्न और निरवच्छिन्न, निरवच्छिन्न का मतलब व्यापक अवच्छेद रहित, और अवच्छिन्न का मतलब, या सावच्छिन्न भी कह सकते हो, अवच्छिन्न सहित सावच्छिन्न। तो घड़े से युक्त, मठ से युक्त होकर के वही व्यापक आकाश खंडित हो गया, अर्थात अव्यापक हो गया। समझ में आ गए आपको, कोई संदेह नहीं इसमें। दूसरा दृष्टांत दिया प्रतिबिंबवाद का, दृश्यते जलचंद्रवत, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। अयम अवच्छिन्न पक्षे दृष्टांतः के बाद कह रहे प्रतिबिंब पक्षे तु समुद्रो नदी तटाकः कूपो घट जलम इत्येकम् एव जलम यथा बहुधा जातम तथा अनात्मा अपि बहुधा जातः। अनात्मत्वेन सभी वस्तुओं में अनात्मा जो है एक ही अनात्मत्व, जैसे जो भी जड़ पदार्थ आपको दिखाई देता है, कल दो बताया था चेतन और अचेतन, चेतन का मतलब जंगम और अचेतन का मतलब स्थावर। तो स्थावर वाले जो भी जड़ पदार्थ हैं उसमें भी जो स्थावरता अथवा अचलता, चरता ऐसा कह सकते, ता का मतलब उस धर्म को बताना। तो अनात्मत्वेन सभी वस्तु एक हैं, और कुर्सी का काम टेबल से नहीं हो सकता, टेबल का काम कुर्सी से नहीं हो सकता, इसलिए परस्पर भिन्न है। कुर्सी टेबल दरवाजे चौखट खिड़की पल्ले ये तो सब नाम अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें जो अनात्मत्व है वो एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा रूपी उपाधि वाले जो हम लोग हैं, हम लोगों का भी नाम अलग है, रूप अलग है, जाति अलग है, वर्ण अलग है, लेकिन इसमें जो आत्मत्व जो है वह एक ही है। इसी तरह से हर जगह नियम लग जाएगा। तो आत्मत्वेन और अनात्मत्वेन एक, लेकिन कार्य भेद से, नाम भेद से सभी है अनेक। समुद्रो नदी तटाक कूप, समुद्र में भी क्या है, जल है, नदी में भी जल है, तालाब में भी जल है, कुएं में भी जल है, और घड़े के अंदर भी जल है। छोटे से छोटा पात्र में जल और बड़े से बड़ा पात्र समुद्र में भी जल। जलम यथा बहुधा जातम, वे जल भी पात्रों के भेद से बड़ा जल और छोटा जल कहलाने लगा। उसी प्रकार से अनात्मा भी अनेक नामों से कहा जाने लगा। तेषु समुद्रादिषु आदित्य एक एव, बड़े से बड़ा समुद्र में जो जल है उसमें दिखने वाला चंद्रमा का प्रतिबिंब अथवा सूर्य का प्रतिबिंब। तो सूर्य जो है ये बिंब है, और जो दिखता है जल में, जो उसकी परछाई दिखती है, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। बिंबम बिंबम प्रति प्रतिबिंब ऐसा बनता है, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिंग हो गई ना, उसमें पड़ गया जल में दिखने लगा सूर्य। तेषु समुद्रादिषु आदित्य एक एव प्रतिबिंबितः सन् यथा बोधा जातः। आगे जाकर के और भी सुस्पष्ट करेंगे, और दृष्टांत और दाष्टांत में क्या भेद है। लघु वासुदेव मरणम में कुछ विशेषता तो है। आज तिजोरी वाला बोलते हैं, स्वामी जी 50 साल से सुन रहा हूं, इनका वास्तव में देखा जाए पूरा जीवन सत्संगमय बिताया। कोई व्यक्ति कहे ना हमने 2-4 साल सुना अब छोड़ दिया, तो आप उदाहरण के रूप में, आप सबके सामने आदर्श के रूप में ये है कि यावत जीवन इन्होंने सत्संग किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आश्चर्य तो यह है कि जो लोग काम करते हैं उनके पास टाइम नहीं है, समझ में भी आता है उनके पास काम बहुत है, लेकिन जिनके पास काम नहीं है उनके पास भी टाइम नहीं है। ये कितने आश्चर्य की बात है। अब उनसे पूछो आपके पास क्यों टाइम नहीं है, तो वो उसका उत्तर उनके पास भी नहीं है। घर में पुस्तकें हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है। माला है, जपने का टाइम नहीं है। भगवान बैठे पूजा करने का टाइम नहीं है। कम से कम थोड़ी देर टीवी पे ही सुन लो, एक घंटे का नियम बना लो। अभी तो आप चल रहे हो, फिर रहे हो, तो यहां आ ही रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आने की स्थिति में नहीं है तो अपने घर में नियम बना लीजिए, क्योंकि यावत जीवन सत्संग हमें करना है। हम भी हरिद्वार में रहते हैं ना, तो वहां तो ऐसा होता नहीं, अपनी छोटी जगह है, वहां कहां सत्संग शुरू करे, कोई आएगा नहीं आए, कई बार पराधीनता भी हो जाती है ना। यहां तो नियम बना है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कई जगह ऐसा भी होता है वक्ता को बैठना पड़ता है, श्रोता कब आएंगे, तो वो भी तो ठीक नहीं। तो उन चक्करों से बचने के लिए सोचा चलो अपने ही पुस्तक आदि पढ़ते रहो, अपनी वृत्ति न खराब हो इसके लिए अभ्यास रखना चाहिए। जैसे एक दिन प्रमाद करेंगे, दो दिन करेंगे, तीसरे दिन तो पुस्तक भी देखने की इच्छा नहीं होगी, पढ़ना तो दूर लगता है, एक साइड में रखो, कौन देखे, इसको सिर दर्द होता है, ऐसा ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो काम करने वाले को समय ना मिले तो चलता है, समझ में आता है, लेकिन जो फ्री में रिटायर होके घर में बैठे हैं वो भी बोलते हैं कि टाइम नहीं है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और चीजों के लिए टाइम तो है, लेकिन जब सत्संग की बात आती बोलते टाइम नहीं। तो ये हमारे आदर्श के रूप में है जो बोलते हैं 50 वर्षों से सुना, और इसमें ऐसे ऐसे बातें सुन रहा हूं जो लगता है कि कभी नहीं सुना, और जो नहीं सुना हुआ है वो भी यहां हमें समझ में आ जाता है कि अब सुन रहा हूं। तो सत्संग उन्होंने किया है, उनके अंदर इतने संस्कार हैं, और ऐसा आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत पुराने पुराने श्रोता हैं, यहां सबको मालूम पड़ता है कि जब वेदांत की कथा चलने लगती है तो हाँ ये तो सुना हुआ है। अब बोलते हैं जब यहां से बाहर जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। लेकिन आपको अपने भूलने का ज्ञान है ना आपको, कि मैं भूल जाता हूं, इसका मतलब कुछ तो आपको याद है जिसको आप भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, कभी न कभी वो अपने स्वभाव में आएगा। तो बिंब प्रतिबिंब, जल में दिखने वाले सूर्य जो बिंब है, जब प्रतिबिंबित होता है बड़े जल में दिखने से वह भी बड़ा दिखता है। जल के अंदर जल के जो जो धर्म है उससे सूर्य का कोई लेना देना नहीं है। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नम लोकमिमम रवि, 13वें अध्याय गीता में देखिए आप, यथा प्रकाशयति एक, एक जो सूर्य है सबको जब प्रकाशित करता है तो कृत्स्नम लोकम, समस्त लोक संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है, तथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते, सूर्य जल के धर्मों से लिपायमान नहीं होता। बिंब प्रतिबिंबित होकर के भी उस जल के जो जो गुण हैं वे सूर्य रूपी बिंब में दिखाई नहीं देते। यहां तक कि प्रतिबिंब में भी जल के गुण धर्म आते हो, समझ में आता है क्या? कुछ आता है जल के गुण धर्म प्रतिबिंब में? आता है नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के लिए जितना बड़ा पात्र होगा उतना बड़ा ही सूर्य प्रतिबिंबित होगा। छोटे वाले पात्र में छोटा प्रतिबिंब, बड़े वाले पात्र में बड़ा प्रतिबिंब। घर में लोग बोलते बड़ा टेलीविजन लाओ, छोटे में समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है, सीन उतना ही है, लेकिन स्क्रीन बड़ी होने से हमें सब कुछ वहां बड़ा दिखता है। तो इस प्रतिबिंब से भी समझ में आ जाता है। नहीं तो एक कवि ने कहा कि किसी के घर में गए तो माताजी ने दूध ला के दिया, एक बार दिया तो उन्होंने फेंक दिया, दूसरी बार दिया फिर फेंक दिया, तीसरी बार भी जब फेंकने लगे तो कहने लगी क्या बात है, मैं बार बार दूध ला रही और आप फेंक रहे हो। बोले अरे आप जितने बार दूध लाए दूध में हमें मक्खी मिली। बोले दूध में मक्खी नहीं, आपके चश्मा पे मक्खी चिपकी हुई है। तो चश्मे पे चिपकी हुई मक्खी उन्हें कहां दिख रही है? दूध में। तो यदि शीशा में लगा हुआ जो भी विकार है और उसको यदि हम अपने चेहरे पे आरोपित करें तो ये तो बहुत बड़ा भ्रम हो जाएगा। जल के जो जो गुण धर्म है और जिसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है और उस जल के गुण धर्म को प्रतिबिंब में आरोपित करें तो ये तो बात बनेगी नहीं। लेकिन होता यही है प्रायः, जल नीला है तो प्रतिबिंब भी नीला दिखेगा, बिंब में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसको अभी दृष्टांत के माध्यम से दाष्टांत में समझाएंगे कि हमारे शरीर में जो चिराभास है जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं, अंतःकरणावच्छिन्न चेतन, उसमें किस प्रकार से बाह्य वस्तुओं का अध्यास होता है और उस भ्रम में पड़ जाने से ही हमें लगता है कि मैं शायद यही हूं। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं और आगे बहुत सुस्पष्ट कर देंगे जो जो हम लोगों के मन में संदेह है, यहां आचार्य कृपा पूर्वक उसको दूर करेंगे। अभी मैं थोड़े इसके भूमिका बनाने के लिए इतनी बात बोला। अब बता रहा हूं कि जो समुद्र आदि में आदित्य प्रतिबिंबित हुए एक होते हुए भी अनेक दिखने लगे, तथा एक एव आत्मा अंतःकरण सहितेषु सर्वेषु अपि शरीरेषु, जिस जिस शरीर में अंतःकरण वाला जो भी प्राणी है उसमें वह आत्मदेव प्रतिबिंबित होकर के, जैसे सूर्य जल आदि में प्रतिबिंबित होकर अनेक दिखने लगे, वैसे वह परमात्मा भी समस्त शरीरधारियों में प्रतिबिंबित होकर के एक होते हुए भी अनेक हो गए। प्रतिबिंबित सन अनेको जाता इति उभयत्रापि दृष्टांतो ज्ञातव्य, ऐसा दृष्टांत समझ लेना चाहिए जैसे जल में सूर्य के प्रतिबिंब, जो सूर्य एक ही है लेकिन अनेक हो गए, क्योंकि समुद्र तालाब कुएं आदि के भेद से, वैसे शरीरों के भेद से ये आत्मदेव भी सूर्य के ही तरह प्रतिबिंबित होकर के अनेक रूप में दिखने लगे। अब जल का जो अपना धर्म है, यथा जल धर्माहा, जल में क्या धर्म है, तो एक तो है शीतलता, दूसरा है जल का हिलना, चलनादय, शीतलता चलन आदि, तो तज्जल निष्ठ प्रतिबिंब एव भांति, जल की शीतलता, जल का जो चलना हिलना डुलना है, ये हमें किसमें दिख रहा है, प्रतिबिंब में। जल के सूर्य जो दिखेगा तो सूर्य भी हमें ठंडे ही लगेंगे, क्यों लगेंगे, क्योंकि जल ठंडा है। सूर्य हिलते हुए भी लगेंगे, क्यों, पानी हिल रहा है। ऊपर देख रहे तो सूर्य गर्म है, उसको देख रहे तो हिल भी नहीं रहा है, और नीचे देख रहे तो हिल रहा है और ठंडा लग रहा है। बिंबभूतम आदित्यम न स्पृशंती, जल के प्रतिबिंब में, जल में दिखने वाले जो प्रतिबिंब है और उसमें जो जल के धर्म हमें लग रहा है कि सूर्य ठंडा है अथवा हिल रहा है, वह हिलने वाला प्रतिबिंब अथवा ठंडा लगने वाला प्रतिबिंब का बिंब से कोई संबंध है, नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, शीशा में हम लोग चेहरा देखते हैं, शीशे के माध्यम से हम अपने चेहरे का ज्ञान भी कर लेते हैं, और शीशा में जो चेहरा दिख रहा है वह अलग है और जो बिंब दिख रहा है उसमें वह उस प्रतिबिंब से अलग है। फिर भी कोई कहे कि शीशा में जो दिख रहा है वो तो बेकार आदमी है, लेकिन जो देख रहा है वो तो ठीक है, बुरा लगेगा ना, शीशा में कौन दिख रहा है, मैं ही तो दिख रहा हूं, फिर कैसे कह दिया। और शीशा के धर्मों से प्रतिबिंब में ही कुछ नहीं हुआ तो बिंब की तो बात बहुत दूर की हो गई। जब जल में दिखने वाला सूर्य के प्रतिबिंब जल के धर्मों से लिपायमान नहीं हो तो हमारा भ्रम है ना, जल के हिलने से हिलना लग रहा है, जल की शीतलता से उसमें भी शीतलता लग रही है, वास्तव में देखा है तो एकदम निर्लिप्त है, फिर तो बिंब में उसका संबंध हो, ये तो कदापि हो ही नहीं सकता। जैसे बिंब का स्पर्श नहीं होता उस प्रतिबिंब से अर्थात जल आदि के धर्मों से, तथा अंतःकरण धर्माहा, अब अंतःकरण के जो धर्म है, कर्तृत्व भोक्तृत्व विकारा अपि तद अंतःकरण निष्ठ चिदाभास एव भांति, जैसे जल के चलन, जल की शीतलता प्रतिबिंब में हम लोगों को भ्रम से लगता है, उसी प्रकार से अंतःकरण रूपी जो जल है और उसके जो अपने धर्म है शीतलता और चलन आदि की तरह कर्तृत्व और भोक्तृत्व, उसका आरोपण, उसका भ्रम किस में हो गया, चिदाभास में। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जोर तो पड़ेगा, क्योंकि जल की शीतलता, जल का चलना हिलना डुलना सूर्य के प्रतिबिंब में भ्रम से हमें लगा, उसी प्रकार से जो चेतन परमात्मा अंतःकरण रूपी जल में प्रतिबिंबित हुआ, वहां जल है तालाब का जल, यहां कौन सा जल है, अंतःकरण रूपी जल, और अंतःकरण के धर्म क्या है, जैसे जल का धर्म है शीतलता कांपना हिलना डुलना, ऐसे अंतःकरण का धर्म क्या है, कर्ता भोक्ता आदि। तो जैसे उस शीतलता का हिलने डुलने का आरोपण हुआ सूर्य के प्रतिबिंब में, वैसे अंतःकरण के धर्म जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, इसका आरोपण हुआ चेतन के प्रतिबिंब में, चित्त प्रतिबिंब में। वो सूर्य प्रतिबिंब है, ये चित्त प्रतिबिंब है, जिसका नाम है चिदाभास। चिदाभास में क्या होने लगा, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये हमें भासने लगा। तर अंतःकरण निष्ठ चिदाभास एव भांति, लेकिन बिंबभूतम आत्मानम न स्पृशंती, चिदाभास में अंतःकरणों के धर्म का जो हमें स्पर्श भ्रम से लगा, उसका बिंबरूपी आत्मा के साथ स्पर्श नहीं होता। जिसको हम बोलते हैं कूटस्थ निर्विकार, इसी का नाम है। कूटस्थ का मतलब है कर्ता भोक्ता का व्यवहार सब हो रहा है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर रहा है, और साक्षी में न कर्तापना है न भोक्तापना है, केवल बैठे बैठे देख रहे हो। यहां तो कर्ता कर्म भी कर रहे हो, उपभोग भी कर रहे हो, फिर भी कूटस्थ हो, निर्विकार है। और साक्षी में तो कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं, न कुछ कर रहे हो न उपभोग कर रहे हो, बैठे बैठे देख रहे हो। जो विटनेस होता है वो यही तो करता है, झगड़े तो दूसरे लोग करते हैं, वो तो केवल देखता है ना, बाद में जाके बताता है हाँ मैंने देखा ऐसे ऐसे करते हुए। तो यहां कर्ता और भोक्तापना में जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व पूर्वक हम प्रवृत्त होते तब कूटस्थ की प्रधानता होती है। जबकि कोई कई बार ये शंका होती है कि कूटस्थ और साक्षी में क्या भेद है, तो यही भेद है बात एक ही, लेकिन कर्म करते हुए उपभोग करते हुए भी जो बिंबभूत आत्मा है निर्विकार भाव से रहता है वो तो हो गया कूटस्थ, कूड़े में स्थित है जो। हाँ, कूटस्थ का अर्थ क्या हुआ? कूड़े में स्थित है जो, मारवाड़ी में बोलते आकूड़ बोले, झूठ बोलता है, तो कूड़ा मतलब झूठ। झूठे में जो सत्य रूप से स्थित है वह है परमात्मा, कूटस्थ। अथवा कूड़ा है स्थित जिसमें, कूड़े है स्थित जिसमें, पांच भूत रूपी जो कूड़ा है, इस कूड़े में स्थित कौन है? आत्मा, इसलिए भी कूटस्थ नाम पड़ा। अथवा उस आत्मा में ये पांच भूत रूपी कूड़े स्थित है, आत्मा है कूड़े में स्थित अथवा कूड़े है आत्मा में स्थित, दोनों तरफ से अर्थ निकलेगा कूटस्थ। और दूसरा दृष्टांत तो दिया ही है, जो लोहार लोहे के ऊपर अलग अलग औजार आदि बनाते हैं, सभी को देखता है लेकिन उस औजार के गुण धर्मों से उसका कोई संबंध नहीं है। औजार बनाने वाले ने बनाया, औजार बन के बन भी गया, लेकिन जो जिसके ऊपर कूटा गया उसको उससे कोई लेना देना नहीं। ये भी कूटस्थ के लिए दृष्टांत दिया जाता है। और इससे भी ना समझ में आए तो किचन में चोपर है, चोपर बहुत सारे सब्जी काटते हो उसके ऊपर, लेकिन चोपर से पूछो तुम्हें भिंडी कैसे लगी, हाँ बोले बनाया तुमने, खाया तुमने, हमसे क्यों पूछ रहा है। तो जैसे उस चोपर को उन सब्जियों से कोई लेना देना नहीं, तो ये सारे दृष्टांत हैं कूटस्थ के लिए। तो कर्ता भोक्ता आदि के व्यवहारों को देखे लेकिन स्वयं उनके विकारों से विकृत न हो, निर्विकार भाव से जो रहे वो तो हो गया कूटस्थ। साक्षी में न कर्ता है न भोक्ता है, दूसरे को देख रहा है वो। और साक्षी का हम बार बार लक्षण इसलिए बताया आप लोगों को याद हो जाए, साक्षी का लक्षण बताया था ज्ञातृत्वे सति उदासीनत्वम साक्षित्वम, ये लक्षण है। ज्ञातृत्वे सति उदासीनत्वम साक्षित्वम, वहां तो हम कर्म कर रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं इसका उपभोग कर रहा हूं, फिर भी आप उसके धर्मों से हट करके रह रहे हो, ये तो कूटस्थ भाव में रहने का तरीका है। लेकिन साक्षी में क्या है, उदासीन हो आप, झगड़े कोई दूसरे कर रहे हैं लेकिन आप कैसे हैं, परमात्मा के घर से सीधे आए हुए हो। तो कल जो बात चली थी ना, याद रहेगा कि राग और द्वेष यदि हमारे अंदर नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सीधे ब्रह्मलोक से आए, बीच में न कोई ट्रेन बदली न कोई फ्लाइट ट्रांजिट हुआ, डायरेक्ट आए अपने घर में आए और वहां से प्रेमपुरी आ गए। ब्रह्म ने भेजा और कहा मैं तुम कौन हो, जानना हो तो वहीं चले जाना, बीच में इधर उधर मत जाना, और कहीं जाओगे लोग गलत एड्रेस बताएंगे, गलत पहचान बताएंगे। तो जहां से हम आए सीधा मामला था और यहां पर भी आके हमें सही एड्रेस मिल गया, अब क्या चाहिए भाई, तो मुक्ति होना पक्का, गारंटी मिल गई, डायरेक्ट आए हैं। तो राग द्वेष के धर्म से युक्त है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट ना आकर के कैसे आए, इनडायरेक्ट आए, इधर उधर से घूम घाम के आए। घूम घाम के आने के कारण यदि कुछ हो रहा है सामने तो उदासीनता क्या रहेगी हमारे अंदर? नहीं रहेगी। अरे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ हम लोग टीका टिप्पणी कर ही देते। तो ज्ञातृत्व सती उदासीनत्वम दोनों लक्षण एक साथ रखेंगे तब साक्षी होगा आदमी। केवल उदासीनत्वम साक्षित्वम करेंगे तो क्या दोष आएगा? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन दोष है, सुना होगा आप लोगों ने। अव्याप्ति का मतलब होता है जो लक्षण जिसका हो उसमें न जाए तो वो अव्याप्ति हो गया, और जिसका लक्षण किया जाए उसमें तो जाए और उससे अतिरिक्त में भी चला जाए उसको बोलते अतिव्याप्ति, और जिसका लक्षण करने जा रहे उसमें तो घटता ही नहीं, वो तो असंभव हो गया। दृष्टांत दिया कि काले रंग, काला रंग जिसका होता है उसको गाय बोलते हैं। हाँ, काला रंग जिसको बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। तो लाल रंग आदि वाले को गाय नहीं कहेंगे क्या? तो ये लक्षण अव्याप्ति हो गया। सींग वाले को गाय कहते हैं तो भैंस को भी तो सींग होती है। लक्षण किया गाय का, चला गया कहां? भैंस में। ये अतिव्याप्ति हो गया। और जिस एक खुर वाले को गाय बोलते हैं, और एक खुर केवल होते घोड़े के, जो उसको बोलते सफ, घोड़े के पैर में देखे ना कटा हुआ नहीं होता है, पूरा होता है ऐसा गोल, उसको संस्कृत में सफ बोलते हैं, अर्थात एक खुर, कटा हुआ हो तो खुर हो जाएगा। तो लक्षण कर रहे थे गाय का और उसमें तो गया ही नहीं, घोड़े में चला गया, ये असंभव है। तो ये तीन लक्षण बहुत प्रसिद्ध है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये तीनों दोषों से जो रहित होगा वह लक्षण सही होगा। तो बोले फिर गाय किसको बोलते हैं? तो जिसके गले में झालर लटक रही है उसको गाय बोलते हैं। शासनादिमत्वम गोत्वम, ऐसा लक्षण किया है तो जिसने बिना झालर वाली गाय है, ये जर्सी गाय जो नाम पड़ा ना, जर्सी गाय, तो जर्सी आइलैंड एक जगह है, नॉर्दर्न आइलैंड से भी आगे समुद्र के बीच में हो, वहां आलू बड़े बड़े होते हैं और वहां के जो गऊ है वो भारत आई होगी, तब से नाम क्या पड़ गया? जर्सी गाय। नहीं तो लोगों को लगता है कि अमेरिका की न्यू जर्सी तो नहीं है, तो वो जर्सी आइलैंड ही है, बहुत ठंडी जगह है और वहां पर एक तरह से उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी लोग बोलते हैं, दुनिया का सारा काला धन वहीं जाता है बोलते हैं, बड़े अमीर लोग हैं वहां के लोग, आलू सब, आलू की खेती बहुत होती है, छोटा सा टापू है। तो जो जर्सी गाय है उसके गले में झालर नहीं होती, इसलिए उन सबको गाय हम लोग नहीं बोलते। और अभी सवेरे सवेरे बात चल रही थी, परमात्मा की सृष्टि तो है ही और हम लोग कितने खिलवाड़ करते हैं उसके साथ। आज आप लोगों को एक नई बात पूछता हूं, आप बताना, एक होमवर्क देके लेके जाना। बोलते हैं कि मादा मच्छर काटती है और नर मच्छर नहीं काटता, चलो बात समझ में आती है। तो मादा मच्छर काटती भी होगी तो उसका भी कुछ कारण होगा, क्योंकि आगे मच्छर की सृष्टि बढ़ानी है। तो मच्छर ने खून पिया, मच्छरी ने खून पिया और उसने अनेक मच्छरों को पैदा किया, तो खून किसका पिया मच्छरी ने? आदमी का। तो मच्छरी के जो बच्चे पैदा होंगे तो आदमी के साथ संबंध होगा कि नहीं? तो हमारा और उस मच्छरी के बच्चों का कौन सा रिश्ता होगा, जरा इसके ऊपर विचार करके आना। क्या चीज है ये? इसका मतलब है उन मच्छरों के रूप में भी मनुष्य ही कहीं न कहीं एक दूसरे से बदला लेता है, चाहे वो खून के रूप में वहां पहुंच करके। यही है जन्म जन्मांतर का संबंध। तो उदासीनत्वम साक्षित्वम मैं अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं जाना चाहिए, इसके लिए केवल उदासीनत्वम साक्षित्वम करेंगे तो अति व्याप्ति दोष आएगा। और वो दोष कैसे जाएगा? खंभा है, खड़ा है, ये भी उदासीन है, तो ये भी झगड़ा लड़ाई या जो भी इवेंट हुआ, घटना घटी, उसका साक्षी कौन होने लग जाएगा? ये पिलर, खंभा। तो केवल उदासीनत्वम साक्षित्वम लक्षण नहीं बनेगा, अतिव्याप्ति दोष हो गया, कर रहे थे साक्षी का लक्षण चला गया पिलर में। केवल कहेंगे ज्ञातृत्वम उदासीनत्वम साक्षित्वम, तो वो फिर साक्षी हो गया ही नहीं, वो तो फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व के धर्म से लिप्त हो गया। और साक्षी कैसा है? इन सब से रहित है, वो तो केवल देखता है, उससे लिपायमान नहीं होता। तो बाकी जितने भी लोग जानने वाले हैं वे भी सब साक्षी होने लग जाएंगे, लेकिन वो उदासीन नहीं है। तो ये जो दोष ना आए इसके लिए दोनों को एक साथ बोलना पड़ेगा कि जिसमें उदासीनता भी हो और ज्ञातृता भी हो, जानना भी हो, उसी में साक्षी का लक्षण जाएगा। तो अब हम लोगों के जीवन में ये देखना है कि हम लोग जब कुछ जानते हैं तो उदासीन नहीं रह पाते, हम लोग जब कुछ जानते हैं उदासीन नहीं रह पाते। और लोक में जो उदासीनता प्रसिद्ध है वह है किसी बात से मन खिन्न हो जाना। क्या बात है, आज आप बड़े उदास लग रहे हो। लेकिन गीता के आधार पर उदासीन का अर्थ करेंगे तो उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। उदासीन वत आसीन, उत मतलब परमात्मा, परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करके उसमें जो स्थित हो चुका है उसको बोलते उदासीन। लोक में उदासीन का मतलब हो गया आपके प्रतिकूल कोई बात हुई और मुंह लटका के जो हम बैठे हैं इसको क्या बोलते हैं? उदासीन। लेकिन वेदांत शास्त्र में उदासीन का मतलब है परमात्म ज्ञान से युक्त हो करके और व्यवहारों से कोई लेना देना नहीं, शांत होकर जो बैठे हैं, उदासीन वद आसीन। इसी से उदासीन एक संप्रदाय भी बन गया। गुणैर यो न विचाल्यते, तीन जो गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे जो विचलित नहीं होता, और अभी हम लोग विचलित हो जाते, उसको झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये जो हम बोल रहे हैं तो इससे हमारा साक्षीपना दृढ़ नहीं होता, साक्षित्व भाव में निश्चय हम नहीं कर पाते। तो जान भी रहे हैं और फिर आप उन गुणों से विचलित नहीं होते हैं, तब जाके साक्षित्व का जो भाव है ये दृढ़ होता जाएगा। तो लोग बोलते भाई साक्षी बन के रहो तो अभी शिव जी की भी कथा होने वाली है, आपको आदरणीय गिरीश भाई जी बताएंगे, लेकिन वहां जो भगवान शंकर के बारे में उदाहरण देते हैं ना, शिव जी की कथा में सब प्रसंग आएगा, वहां बताएंगे। तो शंकर जी के परिवार में देखो ना कितनी विडंबना है, उनके ही परिवार में एक दूसरे के वाहन को मारने के चक्कर में बैठे। यहां भी वहां बुरा मत मानना, हम लोग बाहर से कितने अच्छे दिख रहे हैं, नहीं? अच्छा, ये चेहरे में मुस्कान है ना, ये परमात्मा का रूप है। मुस्कान होना, जल में जो शीतलता है, जल से क्या बनते हैं? तरंग। और तरंग से क्या बनता है? फेन, झाग। जल की जो शीतलता है वो तरंग में आती है और तरंग की शीतलता झाग में आती है। वास्तव में देखा जाए झाग और तरंग जल से अलग नहीं है, और झाग में ऐसे कई किसी झाग को छुओ तो ठंडा नहीं लगता, लेकिन जल के झाग होने के कारण वो अपने आप ठंडा लगता है। तो ये जो हम लोगों के चेहरे में जो मुस्कान आदि है ना, उस आनंद रूप परमात्मा की ही एक झलक है। जैसे झाग में जल का जो जो गुण धर्म दिखाई दे रहा है, ऐसे सच्चिदानंद रूप परमात्मा के जो गुण धर्म है वह इस जागृत अवस्था में सबके चेहरे में दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा, अब उसको कैसे समझना, आगे देंगे। जो तीन सत्ता तीन अवस्था स्वीकार करते हैं। अभी इतना ध्यान में रखना है कि जल में सूर्य के प्रतिबिंब भले ही पड़ा, प्रतिबिंब में भले ही जल के धर्मों का आरोप हुआ, भ्रम हुआ, लेकिन सूर्य का उससे कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से अंतःकरण के अंदर जो चिदाभास है, अंतःकरण के धर्मों से वह आरोप युक्त हो जाता है, लेकिन बिंब रूप जो आत्मा है उसका आत्मा अंतःकरण के धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ये मोटी मोटी बात है। तथा अंतःकरण धर्माहा कर्तृत्व भोक्तृत्व विकारा अपि तद अंतःकरण निष्ठ चिदाभास एव भान्ति बिंबभूतम आत्मानम न स्पृशन्ति। जीव और ब्रह्म की एकता कैसे करनी है, इसका उपाय आचार्य बता रहे हैं। कहते हैं तस्मात् जीवात्मा एव परमात्मा और परमात्मा एव जीवात्मा। जीवात्मा ही क्या है, परमात्मा है, और परमात्मा ही क्या है, जीवात्मा है। अब कितने आसानी से कह गए, नहीं तो कई बार लगता रे जीवात्मा परमात्मा कैसे हो सकता है और परमात्मा जीवात्मा कैसे होगा। लेकिन यहां कह रहे कि जीवात्मा एव परमात्मा, परमात्मा एव जीवात्मा, कथम इति चेत, ये भला कैसे हो सकता है। तो कहते यथा घटाकाश एव महाकाश, महाकाश एव घटाकाश एवं इति जानी ही। घड़े का आकाश ही महाकाश है और महाकाश ही घटाकाश है। घड़े में आ गया इसलिए नाम पड़ा ना घटाकाश, आया तो महाकाश ही है। तो ये तो बहुत ऊंची स्थिति में ये भाषा बोली जा सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। सोनार सोने का काम करे और आप कहो कि वो मिट्टी का काम करता है तो बात तो नहीं जमती, लेकिन विचार करेंगे तो मिट्टी के सिवाय कुछ है भी नहीं हुआ, मिट्टी का ही विकार है सुवर्ण। लेकिन पत्थर का अपना महत्व है, सुवर्ण का अपना महत्व है, लेकिन ये महत्व किसका दिया हुआ है, हाँ हम लोगों का ही दिया हुआ है ना। परमात्मा की दृष्टि में तो क्या है, सब मिट्टी ही है। संसार में ये जितना भी व्यवहार होता है ये हम लोगों का अपना बनाया हुआ है, और इसमें हम ऐसे उलझे हुए जकड़े हुए हैं कि इससे हम बाहर सोच नहीं पाते, निकल नहीं पाते। जब आप वेदांत श्रवण करते हो और पता चलता है कि हम मनुष्यों के द्वारा कल्पनाओं की चादर ओढ़ ली गई है, और वो चादर इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, एक तो चादर होती है मच्छर न काटे उससे बचने के लिए, तो वो तो पतली चादर ओढ़ के भी काम चल जाता है, लेकिन कड़ाके की ठंडी न लगे वहां पर हम थोड़े मोटी चादर मोटे रजाई ओढ़ते हैं, और कई बार तो इतनी ठंडी होती है कि रजाई के अंदर एक कंबल लगा के फिर ओढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, शायद थर्मो कॉन्डक्टिविटी ऐसा कुछ नाम है इसका, थर्मो कॉन्डक्टिविटी। आप चादर को भी डबल कर दो ना तो ठंडी नहीं लगेगी, और सिंगल चादर चाहे कितनी भी मोटी हो ठंडी लगे। तो ईश्वर के द्वारा काल्पनिक ये जगत, एक तो चादर थी ही अच्छी भली, और उसमें हम मनुष्यों ने एक अपनी चादर अलग से जोड़ दिया, ये डबल चादर हो गई ना। अब इसमें परमात्म ज्ञान के हवा को प्रवेश करने का पूरा रास्ता बंद करके रखा है। ये जो कल्पनाओं की चादर ओढ़ी हुई है इसको कैसे हटाना है, तो कहा लघु वासुदेव मननम सुनो, तो धीरे धीरे चादर हटना शुरू हुआ। अच्छा, सो के जब हम उठते हैं तो चद्दर सिर की तरफ से हटाते हैं कि पैर की तरफ से हटाते हैं। अब उन्हें बात चल रही थी ना, बाथरूम में नहाते आजकल लोग, तो योग शास्त्र वाले बोलते हैं कि ये जो सर्दी जुकाम कई बार होता है ना जल्दी जल्दी में, हम लोग प्राय बहाना कर देते हैं आजकल सर्दी गर्मी हो गई, मौसम खराब चल रहा है, हम कई बार बाथरूम में ही गड़बड़ कर जाते हैं। कुछ लोग तो बिस्तरा से उठ के सीधे नहा लेते हैं, वो भी सर्दी जुकाम का कारण है। शरीर होता है गर्म सोते समय, उठे और पानी से आप नहाए तो ये भी एक कारण हो सकता है। चाय पीते हो, दूध पीते हो, कोई गर्म चीज खाते हो और उसी समय तुरंत हाथ धो मुंह धो, ये भी सर्दी जुकाम का कारण हो सकता है। नहाते समय बाल्टी में पानी भरो, उससे नहाओ तो क्रम है, पहले पैर धो, घुटने धो, कमर धो, धड़ धो, उसके बाद सिर पे पानी डालो तो सर्दी जुकाम नहीं होता, ऐसा बोलते योग शास्त्र में। अब शावर के नीचे यदि खड़े होंगे तो पहले पैर भीगेगा कि सिर भीगेगा? फिर तो पहले यही से नमस्ते रुद्रमान्य नमः उतो तो खबे नमः अभिषेक शुरू हो गया भाई। वेद मंत्र बोलो तो शिवलिंग यही तो है विराजमान सहस्रार में, तो यहां से अभिषेक हुआ और सीधे पैर में गया, तो मस्तक से पैर में जाने के बाद बोलते पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, उस पर यदि डॉक्टर आवे तो मारो डंडा। पैर गरम होना, पेट नरम होना और सिर ठंडा होना स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, और यह हमने उल्टा क्रम कर दिया तो पैर के गर्माहट को पहले शांत करना था, फिर धीरे धीरे मस्तक की ओर आना था, और मस्तक पहले से ठंडा, उसके ऊपर और ठंडा डाल दिया, अब लो कर लो बात, हो गए सर्दी जुकाम, परेशान हो गए। तो जब हम सो के उठते हैं तो ये ध्यान नहीं रहता कि चद्दर को पैर की तरफ से हटाएं या सिर की तरफ से हटाएं। अब जिस अज्ञान रूपी परमात्मा के माया रूपी चद्दर को ओढ़ करके, जिसको हमने थर्मो कॉन्डक्टिविटी की तरह डबल कर दिया है, उसको धीरे धीरे उघाड़ने का तरीका है। इतने दिनों से आप लोग श्रवण कर रहे हो और कितने समय हो गए, वर्षों से सत्संग चल रहा है, बार बार ये चद्दर ओढ़ते हैं, बार बार हटाते हैं, अब तो लगता है चद्दर को उठा करके फेंके सीधे एक साइड में। ये तो तब होगा, इसी का नाम है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त का जिसने आनंद लिया वही विदेह मुक्त होगा। तो जीवात्मा और परमात्मा की एकता का स्वरूप है, नाम है केवल घटाकाश और महाकाश। वास्तव में जो घटाकाश है वही महाकाश है, जो महाकाश है वही घटाकाश है। अब यहां शंका उठा रहे हैं कि ननु जीवात्मना कल्पितत्वात् कल्पितस्य च असत्यत्वात् कथम तस्य सति सत्य परमात्मा भेद इति चेत्। कहते जीवात्मा तो कल्पित है ना, जीवात्मना कल्पितत्वात्, और जो कल्पित होते वो असत्य होते हैं। परमात्मा तो काल्पनिक नहीं है, परमात्मा तो सत्य है, और जीव क्या है, काल्पनिक है इसलिए असत्य है। तो असत्य और सत्य दोनों अलग अलग हुए कि एक हुए? अलग अलग हुए ना, असत्य सत्य नहीं होगा, सत्य असत्य नहीं होगा। तो जीव जो काल्पनिक है वो असत्य है और परमात्मा वास्तविक है, सत्य है। तो सत्य और असत्य को जो आप कह रहे दोनों एक ही है, ये कैसे हो सकता है, ये शंका है। कहते भाई तुम्हारे जैसे लोग जो शंका उठाते हैं ना, उन्हीं को समझाने के लिए हमारे यहां ये व्यवस्था बनाई गई है। कहते हैं कि ये जीव के भी तीन अवस्थाएं हैं, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक इति। ये तीन अवस्थाएं जीव के, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक। एते जीवा, ये जो तीन प्रकार के जो जीव हैं, क्रमेण सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न अभिमानी न, ऐसे जीवों में इन तीन अवस्थाओं का अभिमान देखा गया है। सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न। सुषुप्ति का नाम क्या है, यह है पारमार्थिक अवस्था। अभी आगे जाकर के इसका भी खंडन करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए। सुषुप्ति अवस्था कौन सी अवस्था है, पारमार्थिक, और स्वप्न अवस्था है प्रातिभाषिक, और जागृत अवस्था व्यावहारिक। ये तीन हो गए। यथा जले तरंग कल्पितः, जल में जो तरंग दिख रही है ये किसकी कल्पना है? हाँ, जल के अंदर तरंग की कल्पना है जो तरंग दिख रही है। तो जले तरंग कल्पिता और तरंगे च फेना कल्पिता, संस्कृत में झाग को फेन बोलते हैं। फेन संस्कृत का नाम है और हिंदी में ही लोग बोलते फेन है, ये संस्कृत का शब्द। तो जले तरंग कल्पिता और तरंगे फेना कल्पिता तथा पारमार्थिके व्यवहारो कल्पित, व्यावहारिक कल्पित, परमार्थ में व्यवहारिक कल्पित है और व्यावहारिके च प्रातिभाषिक कल्पित। समझ में आ रहा है? जैसे जल में तरंग की कल्पना है और तरंग में झाग की कल्पना है, वैसे ही परमार्थ में अर्थात सुषुप्ति में व्यावहारिक जागृत की कल्पना है और जागृत में स्वप्न की कल्पना है। वो कैसे है ये आगे बता रहे। यथा माधुर्य द्रवत्व शैत्यादीनी पारमार्थिक जल निष्ठानी एव संति, मधुरता शीतलता और तरलपना, तरलता जो द्रव बोलते, द्रवत्व, एक तो द्रव्य होता है, एक द्रव द्रवत्व, तो द्रवता शीतलता और मधुरता ये जो है वास्तविक रूप से किसमें रहते? जल में। पारमार्थिक जल निष्ठानी है, यहां पर पारमार्थिक अवस्था जो समझना हो तो ये जल के अपने पारमार्थिक अवस्था है, उसकी अपनी अवस्था है। लेकिन ये सब किसमें भांत होते हैं? तरंगे भांति। यदि आप तरंग को चखो तो उसमें भी मधुरता है, उसमें भी शीतलता है और वह भी थोड़ा द्रव जैसा है। तद्वारा फेने अपि भांति, और जो तरंग में है वह किसमें है? झाग में भी है। है सब जल के लेकिन आया तरंग में और तरंग से आ गया झाग में। तद्वत् उसी प्रकार से जैसे ये दृष्टांत दिया, सच्चिदानंदा पारमार्थिक कूटस्थ निष्ठा, जो पारमार्थिक सत्ता की बात की गई थी, पारमार्थिक अवस्था जो है जीव की, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के जो गुण धर्म है, जैसे जल के गुण धर्म तरंग में, तरंग से झाग में, वैसे ही ये कहां आ गए? व्यावहारी के भांति। परमार्थ जो सच्चिदानंद रूप है उनके गुण धर्म जो जो है अस्थि भाती और प्रिय आनंद रूपता, ये सब कहां आ गए? व्यवहार में, व्यावहारी के भांति। और तद्वारा प्रातिभाषी के अपि भांति, जो हम व्यवहार में करते हैं वही फिर किसमें आता है? स्वप्न में आता है, प्रातिभाषिक सत्ता जिसको बोलते हैं। भासम भासम प्रति प्रतिभासम, होता नहीं है लेकिन उसी की तरह जिसका आभास होता है, भास होता है, उसी का नाम क्या है? प्रातिभाषिक प्रतिभास। प्रतिभात कह सकते, भास आभास नहीं होता। तो भात का मतलब तो हो गया कि ज्ञान हो गया, प्रकाशित हो गया, और भास का मतलब हो गया कि वो है नहीं लेकिन ऐसा लगा। तो इसी से आभास प्रतिभास ये सब शब्द बन जाते हैं। यथा फेनस तरंगम बिना नास्ति, झाग का अस्तित्व तरंग के बिना नहीं है, पहले तरंग होगी तभी झाग होगा। तो झाग कब है? जब तरंग है। और तरंगो अपि जलम बिना नास्ति, और तरंग भी कब उठेगी? जब जल होगा। तो जैसे झाग है तरंग के आश्रित और तरंग है जल के आश्रित, उसी प्रकार से ये जो जलम तु परमार्थ भूतम, जल तो परमार्थ स्वरूप है, एवं प्रातिभाषिको अपि व्यावहारिकम बिना नास्ति। स्वप्न प्रतिभास है, स्वप्न झूठा है, जो भी हम बोलते हैं कब? व्यवहार में आने के बाद। स्वप्न को झूठा सिद्ध करने के लिए हम सुषुप्ति में नहीं जा सकते, कहां आना पड़ेगा? जागृत में, व्यवहार में आना पड़ेगा। तो प्रातिभाषिको अपि व्यावहारिकम बिना नास्ति। प्रातिभाषिक सत्ता की सिद्धि होती है व्यावहारिक सत्ता में, अर्थात व्यावहारिक सत्ता के अधीन है प्रातिभाषिक सत्ता, लेकिन व्यावहारिक भी किसके अधीन है? पारमार्थिकम बिना नास्ति व्यावहारिक। व्यावहारिक जो है परमार्थ के बिना नहीं है। ओवर तो नहीं हुआ? यदि हो गया हो तो इसको फिर दोबारा से कल करेंगे। आज थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, समय हो गया है, फिर इसका विचार कल करते हैं। हरिओम।